लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि सभी पीड़ितों को जीवन का रास्ता मिले तथा वे यीशु के पवित्रतम हृदय के स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस के धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अवसर पर वेटिकन के प्रेरितिक निवास के पुस्तकालय से सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro itinerario di catechesi sulla preghiera, oggi incontriamo il re Davide, prediletto da Dio fin da ragazzo, viene scelto per una missione unica.
Priye bhaiyo evam behno, suprabhat. प्रार्थना की अपनी धर्म शिक्षा माला में आज हम राजा दाऊद की प्रार्थना पर चिंतन करते हैं। वह ईश्वर की चुनी हुई प्रजा के इतिहास में एक अति महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु चुना गया था। सुसमाचार में हम यीशु को कई बार दाऊद के पुत्र कहे जाते हुए सुनते हैं। वास्तव में उनका जन्म दाऊद की तरह ही बेतलहम में हुआ था। ईश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार मसीह को दाऊद के वंश से आना था। एक राजा जो ईश्वरीय हृदय के अनुरूप पिता के प्रति पूर्ण आज्ञाकारी हो, जिनका कार्य पूर्ण निष्ठा में मुक्ति के कार्यों को परिलक्षित करता हो।
La vicenda di Davide comincia sui colli incontro a Betlemme, dove pascola il gregge del padre Jesse.
दाऊद के इतिहास की कहानी बेतलहम के पहाड़ियों से शुरू होती है, जहां वह अपने पिता जेस्से की भेड़ों को चराया करता था। वह अपने कई भाइयों में सबसे छोटा था। जब नबी सामुएल ईश्वर की आज्ञा अनुसार नए राजा की नियुक्ति हेतु निकला, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उसका पिता उसे एकदम ही भूल गया हो। वह खुली हवा में विचरण करता है। हम उसे वायु के मित्र की तरह देख सकते हैं, जो सूर्य के किरणों प्रकृति में सराबोर है। दाऊद की मित्रता केवल सरंगी के साथ है, जो उनके हृदय को सुकून पहुंचाती है, जिसका वादन करते हुए वह लंबे एकांत समय में ईश्वर की स्तुति गाता है। दाऊद इस भांति सर्वप्रथम अपने में एक चरवाहा है। वह अपने जानवरों की देखरेख करता, उन्हें चराता और खतरों से उनकी रक्षा करता है। दाऊद जब ईश्वर की योजना अनुसार उनके कार्यों चुनी हुई प्रजा की देखरेख हेतु नियुक्त किया जाता, तो उनके कार्यों में कोई अंतर नहीं होता है। यही कारण है कि धर्म ग्रंथ बाइबल में हम चरवाहे के प्रतिरूप को कई बार उद्घोषित पाते हैं। यहाँ तक कि यीशु भी अपने को भला चरवाहा के रूप में परिभाषित करते हैं, जिनके मनोभाव मजदूर से एकदम अलग हैं। वे अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित कर देते हैं। वे उनकी देखरेख करते और उनमें से हर एक को नाम से जानते हैं। दाऊद अपने पहले के कार्यों के परिणाम स्वरूप बहुत सारी बातों का अनुभवी है। अतः जब नबी नातान उनके गंभीर पापों के लिए उन्हें गाली देता, तो वह समझ जाता है कि एक चरवाहे के रूप में उन्होंने कौन सा बुरा कार्य किया है। उन्होंने उस व्यक्ति की भेड़ की चोरी की है जिसे वह प्रेम करता था। उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वह एक नम्र सेवक नहीं, वरन शक्ति का भूखा शिकारी बन गया, जिसने दूसरे को लूटा और अपना शिकार बनाया। संत पापा ने कहा,
Un secondo tratto caratteristico presente nella vocazione di Davide è il suo animo di poeta.
हम दाऊद को उनकी बुलाहटीय गुण के आधार पर एक कवि स्वरूप देखते हैं। इस दृष्टिकोण से हम दाऊद को एक असभ्य व्यक्ति के रूप में नहीं पाते हैं। वह अपने में एक संवेदनशील व्यक्ति है, जिसे गीत संगीत से प्रेम है। उनकी सरंगी सदैव उनके साथ रहती है, जिससे वह कभी अपने खुशी के गीतों से ईश्वर की महिमा करता तो कभी अपने दुखों को प्रकट करते हुए अपने पापों के लिए क्षमा की याचना करता है। दुनिया जो उनकी आंखों के सामने है वह अपने में गुमनाम नहीं है। दाऊद उसके रहस्यों से अपने को वाकिफ पाता है और यही वह स्थल होता है जहां से प्रार्थना की उत्पत्ति होती है। यह हमारे विश्वास में अपने जीवन की सुदृढ़ता को व्यक्त करती है जिसके फलस्वरूप हम जीवन में आश्चर्य से नहीं वरन रहस्य से अपने को विस्मित पाते हैं जो हम में कविता संगीत कृतज्ञता प्रशंसा यहाँ तक कि शोक और विनय में अभिव्यक्त होता है। इस भांति हम दाऊद को स्तोत्र के रचयिता स्वरूप पाते हैं। ये हमें इसराइल के राजा के बारे में कहते हैं तो कुछ उनके जीवन की महान घटनाओं के बारे में है। इस तरह दाऊद में हम एक सपने को पाते हैं जो उनमें एक अच्छे चरवाहे होने की भावना को व्यक्त करता है। कभी वे अपने कार्यों का निर्वहन उचित रूप में करते तो वे कभी उनमें असफल हो जाते हैं, लेकिन इन सारी परिस्थितियों में हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि वह हमारा ध्यान मुक्ति इतिहास की ओर कराते हैं जहाँ से हमारे लिए एक दूसरे राजा की घोषणा की जाती है जिसके बारे में वे हमें एक झलक प्रदान करते हैं। संत पापा ने कहा,
Guardiamo Davide, pensiamo a Davide, santo e peccatore, perseguitato e persecutore, vittima e carnefice pure.
हम दाऊद की ओर देखें, उनके बारे में चिंतन करें। हम उन्हें पवित्र और पापी, सताने वाले और सताया गया, शिकार और हत्यारे के रूप में पाते हैं। दाऊद का व्यक्तित्व इन सभी रूपों में है। इस संदर्भ में यदि हम अपने जीवन की घटनाओं को देखें तो हम भी अपने जीवन में दूसरों का विरोध करते हैं, अपनी निरंतरता की कमी में पाप करते हैं। दाऊद के जीवन में हम एक सुनहले धागे को पाते हैं जो उनके जीवन की सारी चीजों को पिरोकर रखती है और वह है उनका प्रार्थनामय जीवन। उनकी प्रार्थनामय वाणी कभी खत्म नहीं हुई। वे चाहे खुशी के दौर से होकर गुजरे या गमहीन जीवन के क्षणों से, वे सदैव प्रार्थना में संलग्न रहे। केवल उनके संगीत की धुन में परिवर्तन आया। ऐसा करने के द्वारा दाऊद हमें सभी बातों में ईश्वर के साथ एक प्रार्थनामय वार्ता में प्रवेश करने की शिक्षा देते हैं, चाहे वह खुशी हो या गम, प्रेम हो या दुख भरी परिस्थिति, मित्रता हो या बीमारी की घड़ी। वे सारी चीजें जिन्हें हम अपने शब्दों में ईश्वर के सामने व्यक्त करते हैं, ईश्वर उन्हें सुनते हैं।
Davide, che ha conosciuto la solitudine, in realtà solo non lo è stato mai. E in fondo questa è la potenza della preghiera.
दाऊद जो अकेलेपन को जानता था वास्तव में कभी अकेला नहीं रहा और मूल रूप से यही प्रार्थना की शक्ति है जो उन सभी में होती है जो उसे अपने जीवन में स्थान देते हैं। प्रार्थना महानता प्रदान करती है और दाऊद महान थे क्योंकि वे प्रार्थना करते थे। प्रार्थना जो महानता प्रदान करती है उसके द्वारा हम ईश्वर के साथ संबंध सुनिश्चित कर सकते हैं जो जीवन के हजारों कठिनाइयों अच्छाइयां या बुराइयों में मनुष्यों की यात्रा के सच्चे साथी हैं। संत पापा ने कहा, हम सदा प्रार्थना करते रहें, धन्यवाद प्रभु, मैं डरता हूँ प्रभु, मुझे सहायता कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। दाऊद का भरोसा इतना महान था कि जब वे सताए जा रहे थे और उन्हें भागना था, उन्होंने किसी को अपनी रक्षा करने नहीं दिया। यदि मेरा ईश्वर मुझे इस तरह अपमानित करता है तो वह जानता है, क्योंकि प्रार्थना की महानता हमें ईश्वर के हाथों में छोड़ देती है। प्रेम में घायल हाथ ही सुरक्षित हमारे हाथ हैं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Domine Hoviscum, Sit nomen Domini Benedictum, Aiuterium nostrum in nomine Domini, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
परम पिता करते हैं प्यार तुझे हम, आजा अभी तू बीच हमारे, आशीषों से भर दे हमें। आत्मा करते हैं प्यार तुझे हम, आजा अभी तू बीच हमारे, क्षमता से अपनी भर दे हमें।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। बुधवार 24 जून को संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के प्रेरितिक भवन पुस्तकालय में आम दर्शन समारोह को जारी रखते हुए सभी श्रोताओं को अपना संदेश दिया। इसके उपरांत संत पापा ने इटालियन श्रोताओं का अभिवादन कर उन्हें कलीसिया द्वारा निर्धारित संत योहान बपतिस्ता के जन्मदिन की याद दिलाई। संत पापा ने कहा, आज संत योहान बपतिस्ता का जन्मदिन समारोह है, आइए हम उनसे सीखें जो यीशु के अग्रदूत थे और सामर्थ्य के साथ सुसमाचार की गवाही देने की क्षमता रखते थे। हम अपने मतभेदों से परे सद्भाव और मित्रता को बनाए रखते हुए विश्वास की उद्घोषणा कर सकें। संत पापा ने स्पानी भाषा बोलने वाले श्रोताओं को अपने संबोधन में यह भी कहा कि संत योहान बपतिस्ता और राजा दाऊद दोनों जानते थे कि सच्चे ईश्वर के प्रति लोगों का ध्यान कैसे खींचना है। उन्होंने प्रार्थना की कि उनका उदाहरण सभी विश्वासियों के लिए प्रोत्साहन का स्रोत बने, ताकि हम प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर की मित्रता की तलाश कर सकें और हमारा उदाहरण ईश्वर को अपने विश्वासियों के बीच और सभी विश्वासी पुरुषों और महिलाओं को ईश्वर तक लाने में मददगार साबित हो। उत्तरी गोलार्ध में वर्तमान समशीतोष्ण मौसम की ओर अपने विचारों को मोड़ते हुए संत पापा फ्रांसिस ने उम्मीद जताई कि गर्मी का मौसम ईश्वर की उत्कृष्ट रचना में ईश्वर को ढूंढने, चिंतन करने और महसूस करने का सुंदर अवसर हो। उन्होंने प्रार्थना की कि कोविड-19 संकट के बावजूद छुट्टियों का मौसम आराम का एक शांतिपूर्ण समय, सृष्टि की सुंदरता का आनंद लेने और हमारे तथा ईश्वर के बीच संबंध को मजबूत करने का समय हो। उधर वाटिकन में दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि राजदूत जोर जोहानस नस्लवाद और असमानता की गहरी जड़ों की वास्तविकता पर चिंतन किया, जो वर्तमान में अमेरिका और बाहर भी ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन द्वारा इतनी जबरदस्त व्यक्त की जा रही है। 25 मई को मिनियापोलिस में पुलिस हिरासत में जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद से ब्लैक लिव्स मैटर आंदोलन ने ताकत और प्रतिध्वनि एकत्र की है। अल्पसंख्यक समुदायों के लिए न्याय और समानता की मांग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका में भी हो रहे हैं, जहां 1994 में लोकतंत्र विरोधी संघर्ष के बावजूद विभाजन और अन्याय की एक विरासत अभी भी एक ऐसे समाज में व्याप्त है जहां लाखों लोग ज्यादातर गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। वाटिकन में दक्षिण अफ्रीका के राजदूत जोर जोहानस जो खुद वर्षों से रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता और अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, उन्होंने अपने जीवन के कई साल जबरन निर्वासन में बिताया। राजदूत जॉर्ज ने वाटिकन न्यूज के लिंडा बिरदोनी को ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के बारे में अपने विचारों को साझा किया। राजदूत जोहानस ने कहा, मिनियापोलिस में पुलिस द्वारा जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या से मौजूदा सामाजिक उथल पुथल अमेरिका के लिए विनाशकारी है। इस समय अधिकारियों को कोविड-19 का सामना करने हेतु ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला गया है कि अमेरिका में अश्वेत आबादी हमेशा ही अंतिम छोर पर रहती है, न केवल अफ्रीकी अमेरिकियों की लंबी सूची से जो पुलिस अधिकारियों द्वारा मारे गए हैं या जो पुलिस हिरासत में मारे गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस महामारी से भी असंगत रूप से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा, मुझे यह पता लगाना दिलचस्प लगा कि क्यों अफ्रीकी अमेरिकी लोग कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा संक्रमित हैं। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से यह उनकी सामाजिक परिस्थितियां हैं जिसमें वे रहते हैं। वे सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर हैं। वे स्वास्थ्य देखभाल के लिए भुगतान करने के खर्च को नहीं उठा सकते। वे अपनी परिस्थिति से निराश हैं और अपने गुस्से और आक्रोश को प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह देखते हुए कि क्रोध और ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन द्वारा व्यक्त किए गए न्याय की मांग न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पहली बार विश्व स्तर पर पहुंची है। वर्षों से लोग इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कराने का प्रयास करते रहे, पर उन्हें अनदेखा किया गया था। अब सभी सरकारों को स्थिति को सुधारने के लिए चुनौती दी गई है। उधर बांग्लादेश पुलिस ने लीबिया में 30 प्रवासी कामगारों की हत्या के बाद मानव तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई में विदेशों में नौकरियां दिलाने के झूठे वादे पर लोगों से पैसे वसूलने के आरोप में 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार मई के अंत में उत्तरी अफ्रीकी राष्ट्र में तस्करों द्वारा 26 बांग्लादेशियों सहित अन्य प्रवासियों का अपहरण और उनकी हत्या के बाद तस्करों की गिरफ्तारी की श्रृंखला शुरू हुई। लीबिया की राजधानी त्रिपोली से करीब 180 किलोमीटर दूर मिजदाह में तस्करी के एक गोदाम में 38 बांग्लादेशियों सहित 42 प्रवासियों को बंदी बना लिया गया था। प्रवासियों ने कहा कि उन्हें लीबिया के माध्यम से यूरोप पहुंचने के लिए तस्करों को 8,000 से $10,000 के बीच भुगतान किया गया। हालांकि तस्करी गिरोह ने अधिक धन जमा करने के लिए उन्हें प्रताड़ित करना शुरू किया। बंधकों ने हमला किया और तस्करों में से एक को मार डाला। प्रतिशोध में गिरोह ने उन पर 30 गोलियां चलाई और 12 को घायल कर दिया। बांग्लादेश की पुलिस ने कहा कि बांग्लादेश में गिरफ्तारियां ज्यादातर राजधानी ढाका में की गई और एक रिंग लीडर भी पकड़ा गया जिसने पिछले दशक में अवैध रूप से लीबिया में लगभग 400 बांग्लादेशियों को बाहर भेजा था। उधर अमेरिका सहित कई देशों ने मंगलवार को वैश्विक कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि जारी रहते हुए भी लॉकडाउन को उठाया। पश्चिमी यूरोप के कुछ हिस्सों में कोरोना संक्रमण स्थिर या कम हो गया है। 1.3 बिलियन से अधिक आबादी वाला राष्ट्र भारत प्रत्येक दिन लगभग 15,000 नए संक्रमण दर्ज कर रहा है और मंगलवार को कुछ राज्य वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नए लॉकडाउन उपायों पर विचार कर रहे हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।